आज का रात्रि क्लास है 30 मार्च 1968। बनारस में सर्विस में मदद चाहिए। इस समय वहां की सर्विस वृद्धि को पाई हुई है, तो बाप कहते हैं जहां सर्विस देखो तो आजू बाजू जो भी लोग हैं उनको सर्विस में मदद करनी चाहिए, वहां सर्विस अच्छी होती है। बाबा का सदैव ख्याल रहता था, वहां से ही विद्वान आदि पढ़कर के निकलते हैं। कलकत्ते वालों को भी लिखा है, शांति निकेतन बहुत अच्छा है, उस तरफ कोई म्यूजियम खुल जाए, तुम्हारा नाम अभी अच्छा होता है, '63-'68 की वाणी का तीसरा पेज। बाबा ने समझाया है, हाल जो बनाते हैं शादियों के लिए उन्हों को भी समझाना है, जो समझावेंगे तो बाबा के पास जरूर समाचार आ जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे समझाया। धर्मशाला भी शादियों के लिए बनाते हैं, वहां लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए हुए हैं। विशाल बुद्धि जो होंगे वो बड़े साइज के चित्र पसंद करते होंगे। गवर्नमेंट्स भी तो कैलेंडर्स बड़े बड़े बनाती है, छोटे चित्रों के शौकीन जो हैं तो बाबा समझता है इनकी छोटी बुद्धि है। बड़े चित्र पर समझाना बहुत सहज हो जाता है, प्रदर्शनी आदि होती है तो छोटी चीज नहीं रखनी चाहिए, बड़े बड़े चित्र अच्छे हैं। जबकि छप करके तैयार हुए हैं तो उस पर सर्विस करनी चाहिए। ये चित्र तो बहुत अच्छे हैं और इन पर समझाया बहुत अच्छा जा सकता है। बाबा समझते हैं छोटी बुद्धि है इसलिए बड़े चित्र पसंद नहीं करते। राजाओं के पास गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े चित्र होते हैं ना। बाबा को तो 6x4 की साइज पसंद आती है, बड़ा ही क्लियर चित्र है। छोटा घर भी बन हो तो भी मुख्य चित्र 6 होने चाहिए और 6x4 के लग सकते हैं, छोटे चित्र नहीं होने चाहिए। ये तो 30x40 इंच का छपाया है तो इसको कहां भी ले जा सकते हैं। बच्चे समझते हैं पत्थर बुद्धियों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पावेंगे। कहते हैं शिव बाबा सगाई करते हैं, ये पतियों का पति है, वास्तव में तो ये बापों का बाप, टीचर्स का टीचर और गुरुओं का गुरु है। ये पति अक्षर नहीं, हां पतियों का पति है परंतु नहीं, वो तो बाप है ना, बाप से सगाई कैसे होगी। अक्षर बाबा कह देते हैं परंतु समझाते हैं, मैं बाप हूं, टीचर हूं, गुरु हूं, पति नहीं बन सकते, वो तो रांग हो जाता है। अंगूठी पहनाई इसका मतलब ये नहीं सगाई नहीं है, ये यादगार है, शिव बाबा की याद रहेगी। शिवपति कहना अक्षर रंग हो जाता है, क्यों रंग हो जाता है? क्योंकि शिव बिंदु का नाम है और बिंदु तो निराकार है। ये लिंग तो यादगार है निराकारी स्टेज की। ऐसे ऐसे अक्षर कहे नहीं जाते हैं, तो बाप को पति नहीं कहा जाता, गॉडफादर ही कहते हैं। गॉड हस्बैंड तो नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे अक्षर विचार करके बोलना चाहिए, कोई भी उल्टा अक्षर न निकले। भगवान क्या सिखलाते हैं, ऐसे ऐसी बातों को थोड़ा करेक्ट करो। मुख्य हैं ही तीन संबंध, बाप, टीचर और गुरु, और वो भी आत्माओं का बाप है। ये भाइयों बहनों का बाप बनते हैं। एडॉप्टेड बच्चे हो तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, तो इनके लिए मत समझो। और डायरेक्शन भी वो देते हैं ये डायरेक्शन देने वाला नहीं है, ये ज्ञान बड़ा ही अटपटा है, इसमें खिटपिटी भी बहुत होती है। पतितादिनी कहते हम भगवान हैं, परंतु इन पतित बुद्धियों का कुछ भी ख्याल नहीं चलता है। तुम जब देखते हो अच्छा सर्विस पर बुलावा होता है तो जाना चाहिए, एक और दो रोज में कोई नुकसान नहीं हो जाता है। दिल्ली से एक लिखत आई थी, उन्होंने लेटर अच्छा लिखा हुआ है, जहां म्यूजियम है वहां के लिए लिखा है। ऐसी ऐसी इन्वेंशन कार्ड्स भेजना अच्छा है, बाप आते ही हैं पढ़ाने के लिए। तुम कहेंगे हम पढ़ते हैं, और भगवान वाच है मैं तुमको पढ़ाता हूं, राजाओं को राजा बनाता हूं। तो ये पढ़ाई ठहरी ना, सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले को माथा टेकते हैं। तो देखो बाप ही आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। ऐसे ऐसी बातें बड़ी युक्ति से लिखनी चाहिए, भगवान वाच है। कहते हैं बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ये भी टॉपिक है। राजाओं के राजा देवी देवता ही ठहरे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर तुम्हारा अमृत बेला होगा, उस समय टाइम बहुत शुद्ध होता है। रात को तो खराब वायुमंडल होता है, तो सदैव सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, इतनी नींद काफी है। इससे जास्ती नींद नहीं करनी चाहिए। खास करके भाषण करने वालों को तो जरूर विचार सागर मंथन करना चाहिए। मंथन करके फिर लिखना चाहिए, फिर उसे देखना भी चाहिए। अभ्यास बढ़ता जाता है तो फिर वो पक्का हो जाता है। बच्चों को सर्विस को बहुत ख्याल आना चाहिए। सर्विस तो बहुत बहुत कर सकते हैं, घाट पर भी जा सकते हैं। बोलो, पानी से पाप नाश होते हैं क्या? पानी से शरीर साफ होगा, आत्मा कैसे साफ होगी? आत्मा निर्लेप तो नहीं हो सकती। सुख दुख आत्मा को ही सहन करना पड़ता है। पाप पुण्य का लेप छेप तो आत्मा को ही लगेगा। ये बातें समझाने की फुर्सत होनी चाहिए। मंदिरों में भी जा सकते हैं, पंडे के घर में जाकर के रहेंगे तो उतना खर्चा नहीं लगता है। धर्मशालाएं भी बहुत है। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दे, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। परंतु ये नमस्ते किसने की? गुड नाइट किसने की? सोचो तो सही। ये बड़ी गुहेराज की बातें हैं। आज का प्रातः क्लास है 29 मार्च 1968। अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से कहेंगे योगी, वो ही सच्चा योगी है। क्योंकि बाप तो सच है ना, सच्चा अविनाशी होता है। शरीर को सच थोड़े ही कहेंगे। आज शरीर है, कल नहीं रहेगा। तो तुम्हारा बुद्धि योग सदैव सच के साथ रहना चाहिए। और वो सच्चा बाप जो कुछ समझाते हैं सच्चे ही समझाते हैं। योगी और उनके मुकाबले भोगी। योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। परंतु तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उनों का तो समय ही अलग है, तुम्हारा संगम युग समय है, तुम्हारा समय अलग है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग के हो, तुम्हारा योग ही पुरुषोत्तम संगम युगी योग है। और तो किसी को भी संगम युग का पता ही नहीं है। तो पूछना चाहिए, पावन योगी हो या पतित भोगी हो, ये तो बच्चे जानते हैं। और बाप तो सभी को बच्चे बच्चे ही कहते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं हम सभी बेहद के आत्माओं का बाप हूं। और ये सारी समझ की बात है। तुम भी समझते हो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, वो हमारा बाप है। फिर तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वो तो है भोगी, तुम हो योगी। तुम बाप को जानते हो, बाप अपना परिचय देते हैं, ये भी तुम समझते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जिसका तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम बनने का ये पुरुषोत्तम युग है। और पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंचते ऊंच पवित्र मनुष्य को। नाम ही है पुरुषोत्तम। जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम थे उत्तम। जानते हो ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण ही थे। अभी उनके टाइम का पता भी तुमको लग गया है। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरानी दुनिया होती है। फिर पुरानी को नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी हम संगमयुगी ब्राह्मण कुल के हैं। इस ब्राह्मण कुल में ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा। ब्रह्मा को शरीरदारी दिखाते हैं और शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शारीरिक दोनों का मेल है। उसको बाबा कहा जाता है। ये वंडरफुल रथ है और शास्त्रों में इनका गायन भी है। यादगार मंदिर भी बनाते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाप ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। बहुत में बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। तो 84 जन्मों के अंत और उसके भी अंत में अर्थात 84 जन्म में 84वें जन्म में प्रवेश करता हूं और उसका भी अंतिम जन्म होता है। अंतिम टाइम होता है 100 साल। जो ब्रह्मा के 100 साल गाए हुए हैं प्रवेश करता हूं। कितना क्लियर समझाता हूं। पहले तो भगवान वाची ही कहना पड़े। तो भगवान वाच में बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। और ये बात तो तुम बच्चों नहीं समझिए और कोई कब समझा ही नहीं सकते हैं कि बहुत जन्मों के भी अंत का टाइम कौन सा होता है। तुम बच्चे भी कब कब भूल जाते हो। तो पुरुषोत्तम संगम युग ये अक्षर बहुत जरूरी है। कौन सा टाइम हुआ है? 76 से पता चलता है कि जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी कौन है। ये भी लिटरेचर आदि में लिखना भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इस युग में पुरुषोत्तम अक्षर याद रखेंगे तो समझेंगे हम नई दुनिया के लिए बहुत बदल रहे हैं। और नई दुनिया में होते हैं देवी देवताएं। अभी हम संगम युग पर हैं। भगवान का भी अभी तुमको पता पड़ा है। न कलियुग में पता पड़ता है न सतयुग में पता पड़ता है। तो संगम युग को कब भूलो मत, संगम युग को भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम जानते हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बदल रहे हैं, ये दुनिया भी बदल रही है, सारी पुरानी दुनिया बदल कर नई होती है। बाप कैसे पुरानी दुनिया को बदलते हैं, बच्चों को भी बदलते हैं, बच्चे बच्चे तो सभी को कहेंगे ना, सारी दुनिया की जो भी आत्मा है सभी का बाप हूं और सभी का पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र भी सिद्ध करना है, हरेक आत्मा अपना अपना धर्म स्थापन करती है। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन नहीं कर सकता। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। नई दुनिया में देवी देवता धर्म कहेंगे, इस पुरानी दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्य है। नई दुनिया में होते हैं देवी देवताएं, देवताएं पवित्र रहते हैं, वहां रावण राज्य नहीं होता है, बाप आकर के तुम बच्चों को रावण राज्य पर जीत पहनाते हैं। खुद जीत नहीं पहनते हैं, बच्चों को ही विजय पहनाते हैं। रावण पर विजय पहनने से राम राज्य हो जाता है, राम राज्य नई दुनिया को, रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया को तुम बच्चे जानते हो, राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। रचयिता बाप बैठ बच्चों को रचना का राज समझाते हैं, ये बाप है रचयिता मनुष्य सृष्टि का बीज, और बीज को ही कहा जाता है वृक्षपति। अभी वो तो जड़ बीज होते हैं, उनको ऐसे नहीं समझेंगे वृक्षपति। अभी तुम समझते हो कि बीज तो जैसे वृक्ष का पति होता है, बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। वो तो होते हैं जड़ झाड़, जड़ बीज, और ये तो फिर है चैतन्य बीज, और चैतन्य मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इस बीज को कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ये चैतन्य है, उनकी महिमा की जाती है। चैतन्य है इसलिए उनमें सारा ज्ञान है, जड़ बीज में कोई ज्ञान थोड़ा ही होता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बड़ा है, ये सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, और कितनी बड़ी विश्व है, खुल 3068 की वाणी का दूसरा पेज, मॉडल कितना छोटा बनाया जाता है और ये तो कितना बड़ा बेहद का जा रहे हैं, मनुष्य शक्ति का झाड़ है सबसे बड़ा, इसमें ऊंचते ऊंच है बाप, नॉलेज फुल है क्योंकि चैतन्य है, उन झाड़ों का नॉलेज तो बहुतों का होता है, परंतु इस झाड़ और बीज की नॉलेज एक बाप ही देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बाप है, तुम्हारी बुद्धि ही बेहद की है, बाप ने हद की बुद्धि को बदलकर बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस सारे वृक्ष को जान गए हो, कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। तो देखो बाप, तुम बच्चों को बेहद में ले जाते हैं कि कुछ सारी दुनिया पतित है, एक दो को कोस कर अर्थात हिंसा करने वाले हैं, सारी सृष्टि हिंसक बनी हुई है, परंतु तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है और सभी धर्म होते हैं हिंसक, अहिंसक सिर्फ एक ही धर्म होता है नई दुनिया में, क्यों? महात्मा बुद्ध का धर्म अहिंसक नहीं कहेंगे
आप?
जैन धर्म वाले भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, परंतु वो सब देह के धर्म हैं और देह तो विनाशी है, तो जो है ही विनाशी उनसे अविनाशी कैसे होगा? देवी देवता सनातन धर्म 5000 वर्ष पुराना है और ऑलराउंड पार्ट बजाता है, दूसरा कोई भी धर्म ऑलराउंड पार्ट ही नहीं बजाता। वो धर्म भी है विनाशी और उनकी धर्मखंड भी विनाशी, ये धर्म ही अविनाशी है और इसका धर्मखंड भी अविनाशी है। अहिंसक धर्म को राम राज्य कहा जाता है, पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है और उसमें एक ही धर्म होता है, पहले थुर में एक धर्म है, फिर फाउंटेन 3 ट्यूब्स निकलती है एक जैसी, ये फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, फिर उनसे 3 ट्यूब्स निकलती है, पहले थुर फिर टारटारियां छोटे छोटे कितने निकल पड़ते हैं, अभी तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई भी झाड़ ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मिसाल बड़ के झाड़ से एक्यूरेट दिया जाता है। बड़ का झाड़ बिगर बिना थुर के बड़ी बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है, थुर है ही नहीं। और ये झाड़ सूखता भी नहीं है, सारा झाड़ हरा भरा रहता है। ये भी देखो कितना बड़ा झाड़ है। बाकी देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन नहीं है, परंतु थुर होगा तो ना। राम राज्य अर्थात देवी देवता इस थुर में ही आ जाता है। बाप ने समझाया हम कैसे किन तीन धर्म स्थापन करते हैं, ये बातें तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही समझते हो। कौन से तीन धर्म स्थापन करते हैं? और जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय। तुम ब्राह्मणों का ये है छोटा सा कुल, फिर छोटे छोटे मठपंत कितने निकलते रहते हैं। अब देखो ये अरविंदो आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाया है, क्योंकि उसमें विकार के लिए कोई मना ही नहीं करते हैं। यहां तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, ऐसी बात और कोई तो कह ही नहीं सकता। कोई धर्म में, कोई धर्म पिता ने ऐसे नहीं कहा, नहीं तो उन्हों के पास हंगामा हो जावे। यहां तो है ही सब पतित मनुष्य, तो पतित दुनिया में जो भी पतित मनुष्य हैं पावन बनने की बात सुनते ही नहीं। कहते हैं विकार के बगैर बच्चे पैदा कैसे होंगे। अब इन विचारों का दोष भी नहीं है। गीता पाठी कहते हैं भगवान वाचिका महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे, परंतु फिर भी समझते नहीं है। वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन सुनाने वालों को पकड़ना चाहिए। कौन सा अक्षर? काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा कहते हैं जैसे हनुमान के दर पर जूतों में जाकर के बैठता था, ऐसे तुम भी जाकर बैठो, जाकर के किनारे बैठ करके सुन करके आओ, फिर जब वो अक्षर सुनावे तो पूछना चाहिए इसका क्या रहस्य है कि काम महाशत्रु है। ये दुनिया तो काम के बगैर चलती नहीं, अगर काम महाशत्रु हो जाएगा तो दुनिया फिर कैसे चलेगी, सो तो बताओ। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े ना। और ये बात भी तुम ही कह सकते हो, जो खुद पवित्र नहीं रहते वो दूसरों को सुनाए भी नहीं सकते, सुनावेंगे तो असर भी नहीं पड़ेगा। तुम जानते हो अभी राम राज्य की स्थापना हो रही है, तो महावीर तुम हो, इसमें डरने की बात नहीं है, कोई भी पत्थर नहीं मारेंगे। बहुत ही प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने अभी सुनाया काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत विश्व का मालिक बनेंगे। गाते भी हैं काम जीते जगत जीत, फिर आप तो ये बातें बताते नहीं हो कि पवित्र कैसे बने। अभी तुम बच्चे तो पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, जो महावीर हैं वो ही विजयमाला में विजय पिरो जाते हैं। बाकी ये लोग जो जो सुनाते हैं और रंग बातें बताते हैं, ऐसी रंग बातें सुनने से मनुष्यों के कान हिरे हुए हैं। अभी तुमको तो ये रंग बातें सुनने पसंद ही नहीं आती है, राइटियस बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगती हैं, तो बाप कहते हैं हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग जरूर करना है कि भगवान ही कहते हैं पवित्र बनो, वो भगवान एवर प्योर है, सत्युग में देवताएं पवित्र थे, इस समय मनुष्य पतित हैं, इसलिए उनको असुर कहा जाता है। ऐसे से प्रेम से बैठ करके समझाना चाहिए, बोलो हमारे पास भी सत्संग होता है, हमारे सत्संग में भी समझाया जाता है काम महाशत्रु है, परंतु समझाने वाला एक ही सत्य बाप है। अभी पवित्र बनना चाहते हो तो भगवान की बताई हुई युक्ति से पवित्र बनो, महावीर के लिए दिखाया जाता है कि रावण भी उनको हिला ही नहीं सका, उनके पांव को डुला ही नहीं सका, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं, वो समझते हैं कोई स्थूल पांव नहीं डिगा सका। ये मनुष्य रामायण कितना पढ़ते हैं, परंतु इस रामायण में तो बहुत ग्लानी है। राम की सीता चुराई गई, कृष्ण के लिए कहते हैं खुद रानियों को चुराया, ये सभी ग्लानी की बातें लिखी हैं। बाप समझाते हैं कि कितनी ग्लानी की है, तब ही कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, भारत का ही नाम आता है और बाप आते भी भारत में। ये भारत बहुत ही भर्तुखंड था, भारत हर बात में भर्तु था, धन दौलत पवित्रता सुख शांति जितनी भारत में थी उतनी और कोई खंड में नहीं होती है। भारत सभी से भर्तु था। 29-3-68 की वाणी का तीसरा पेज, अभी वो ही भारत देखो दुखों से भरपूर है। ऐसे क्यों हुआ है? अपवित्रता के कारण ऐसा हुआ। ऐसी अपवित्रता कहां से आई?
जन्म लेते लेते।
जन्म तो लिए, सत्युग त्रेता में भी जन्म लिए, परंतु वहां तो अपवित्रता नहीं थी। हाँ, ये जो विधर्मी आत्माएं आई इनके संग के रंग में आते आते हमारा क्या हाल हो गया। इसलिए पुकारते हैं हे दुखहर्ता हे सुखकर्ता, तुम भी कितनी खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से सुख का वर्षा न लेता हो। तो पहले पहले तो अलफ पर समझाना चाहिए। क्या बिंदु पर नहीं समझाना चाहिए है?
बिंदु
बेसिक नॉलेज में तो पहले बिंदु पर ही समझाते हैं। हम आत्मा ज्योति बिंदु, हमारा बाप परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु, तो बिंदु आत्मा परमात्मा पहले समझाना चाहिए या अलफ बे समझाना चाहिए? अलफ नहीं समझने से कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आवेगा। अलफ को खड़ा डंडा कहा जाता है, है? उर्दू में पहला अक्षर अलफ, खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है। माना वो अलफ संसार में अलफ के रूप में जब से प्रत्यक्ष होता है तब से लेकर अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला है। उस अलफ को न समझने से कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आवेगा। बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, क्या कौन सा बाप है? तो बेहद का, लेकिन वर्षा भी बेहद का देने वाला है, अखंड सुख शांति का वर्षा देने वाला है। तो पहले तो उस बाप को जानना चाहिए। ऐसे बाप का जब निश्चय बैठे तब ही आगे बढ़ना चाहिए। माना और चार चित्रों पर जो डिटेल में समझानी देते हैं वो समझानी भी कब देनी ठीक है? जब पहले बुद्धि में अलफ का परिचय बैठे। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार तो नहीं है, बाप पतित पावन है, तो उनको याद करो, बस याद से ही तुम पावन बन जाओगे। समझ करके ही तो याद करेंगे ना। तुमने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। जीवन मुक्ति भी सेकंड की बात है, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य बात यह है बाप की याद, और इस याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। अगर विघ्न न पड़े तो यात्रा निरंतर हो जावे। विघ्न आते हैं तो यात्रा में अंतर पड़ जाता है, यात्रा खंडित हो जाती है। आधा कल्प देही अभिमानी और आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो तो अभी इसे एक जन्म में देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। इसके लिए तो सहज है, तुम बुलाते हो बाप दादा, ये भी समझाते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। तो भी इनको सदैव याद नहीं रहता है, है? इनके सिर पर बाप की सवारी है तो भी इनको सदैव याद क्यों नहीं रहता? समझता भी हूं मैं उनका रथ हूं। शिव बाबा इस रथ पर विराजमान है, इतना नजदीक है, फिर भी कहा बाबा कहते हैं तुम बाबा से भी जास्ती चाट रख सकते हो, मेरे से भी जास्ती तुम याद कर सकते हो। ये क्या बात हुई? इनको जास्ती क्यों नहीं याद पड़ता? जिम्मेवारी जास्ती
मां है ना,
ये खुद कहते हैं मेरे सिर पर तो विराजमान ही है, इकट्ठे हैं तो भी ये आ जाता है। समझाने वाला तो मैं ही हूं, मैं ही बेहद में टिक जाता हूं। कोई कोई समय मैं खुद ही समझता हूं कि मैं मालिक हूं, मैं हूं, बैटरियों को चार्ज करता हूं, सभी आत्माओं को सर्च लाइट देता हूं, ये तो बहुत सहज है, मैं खुद ही बड़ी मिशन हूं। अब है तो बाबा, परंतु मैं अपन को समझ लेता हूं, मैं सभी आत्माओं को सच लाइट देता हूं, सबको रिजिस देता हूं, सभी आत्माओं को सच लाइट का बल देना है तो फिर मैं अपन को ऐसा समझ लेता हूं। इसके होते भी बाबा फिर कह देते हैं तुम बाप के साथ योग में रहने का पुरुषार्थ करते हो और मैं घड़ी घड़ी मालिक बन जाता हूं, तो ये कोई कायदे अनुसार पुरुषार्थ थोड़े हुआ, मैं याद कहां करता हूं। सच लग देता हूं, सारी दुनिया की आत्मा को याद करता हूं, ये भी अच्छा है। बाकी यथार्थ रीति मैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद नहीं करता हूं, घड़ी घड़ी वह बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? शिवो अहम, घड़ी घड़ी वह बन जाता हूं, परंतु ये एक्यूरेट राइट तो नहीं है। तुम सभी कुछ भूलकर एक बाप को याद करते हो, मैं सब कुछ भूलकर एक बाप को याद नहीं कर पाता हूं। तो यह फिर सभी कुछ भला अपन को समझ सकते हैं, अपन को ही समझ करके खड़ा हो जाता हूं। संग का रंग कहा जाता है ना, तो बाबा के संग का रंग इन पर भी चढ़ जाता है। कहते हैं मैं भी उनके संग के रंग में रंग जाता हूं। ये सब बातें विचार सागर मंथन करके तुम बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया की आत्माओं को सच लाइट देता हूं, ताकत देता हूं, ऐसा हो जाता है। बैटरी होकर के तो बैठना ही है, तुमको भी संपूर्ण बैटरी बनना है। तभी बाबा ने उस दिन भी कहा था मैं भी जैसे बाप बन जाता हूं, बाबा को ऐसा समझने से भी खुशी होती है। बैठ रही हूं, काम करता हूं, गुरु से सीख जाता हूं, बाबा को मजा आता है। उस याद की यात्रा में तो कितने विघ्न पड़ते हैं, इसमें विघ्न नहीं पड़ता है, ये बहुत सहज होता है कि मैं उनके संग में बैठा हूं तो खुशी होती है। जो भी आत्माएं हैं सभी की बैटरी होकर के रेजिस देता हूं, तुम बड़ी बैटरी के साथ योग लगाते हो और मैं तो उनके साथ ही हूं, तो उनके संग के रंग में रंग जाता हूं। परंतु ये कायदे सिर नहीं है क्या? क्या कायदे सिर नहीं है? हैं? हैं? संघ का रंग है बिंदी, आत्मा का बिंदी के साथ लगता है कि जब बिंदी साकार में आती है तब संघ का रंग लगता है। जब तक बिंदु बाप साकार में ना आवे तब तक संघ का रंग भी कैसे लगावे? तो बोला ये हमारी याद कायदे सिर नहीं है, ये भी समझ लिया। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, मैं फिर बैटरी बन जाता हूं, फिर भी दुनिया को तो भूल जाता हूं ना, देखते हुए कुछ भी देखने में नहीं आता है। बाप के लिए तो दुनिया है ही नहीं, तब तो बैटरी कहा जाता है। तो बाबा को मजा आता है, साथ में है तो संग का रंग लग जाता है। फिर भी कोशिश करता हूं बाबा को याद करने की, बहुत उनकी महिमा करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प हम आपको याद भी नहीं करता हूं, अभी तो बहुत याद करता हूं। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिनकी पूजा करते थे हमको पता ही नहीं था कि हम खुद ही यह बन जाएंगे, अभी वंडर लगता है। योगी बनने से फिर देवी देवता बन जाएंगे। मेरे ये सभी बच्चे हैं बहुत ही प्यार से संभालते हैं, पालना करते हैं, ये भी हमारे समान नरसिंह नारायण बन जावे। यहां आए ही इसलिए हैं। कितना समझाता हूं बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल रखो, परंतु करते ही नहीं है। तो समझता हूं अजन अभी समय पड़ा है। 29-3-68 की वाणी का चौथा पेज, कुछ न कुछ भूले होती रहती है छोटी या बड़ी, प्यार से समझाता हूं भूले नहीं करो, उसको दुख न दो, भूल करते हो तो गोया दुख देते हो, बाप तो को कभी दुख नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ डायरेक्शन ही देते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा लक्ष्मीनारायण जैसा मीठा बनना है, देवी गुण धारण करना है, पवित्र बनो। अपवित्र को आने का यहां हुक्म ही नहीं है, परंतु कब कब आने देते हैं, वो भी अभी क्या अपवित्र को यहां आने का अलाउ कब तक करते हैं? अभी अलाउ करते हैं जब इस तरफ बहुत भारी हो जाएगा, जब इस तरफ बहुत भारी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो ना कर देंगे, कहेंगे ये टावर ऑफ प्योरिटी है, टावर ऑफ साइलेंस है, ये ऊंचे से ऊंचे है, एक ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ है। तो अभी अपन को आत्म समझ बाप की याद में रहना है, ये हाईएस्ट टावर है और हाईएस्ट पावर है, वहां बड़ी साइलेंस रहती है, आधा कल्प का कोई झगड़ा नहीं होता है। यहां तो देखो कितना झगड़ा आदि लगा पड़ा है, शांति हो नहीं सकती। शांति का धाम है ही मूल वतन, फिर शरीर धारण करके विश्व में पार्ट बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, अशांति ये रावण कराता है। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में आते हैं तो अशांति कर देते हैं। इस योग बल से तुम्हारे में सभी किचड़ा निकल जाता है, याद से किचड़ा भस्म हो जाता है, सारी कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तो तुमको शिक्षा दी थी, क्या वो तुम सारी शिक्षाएं भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, परंतु वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। निन्यानवे % झूठ ही झूठ है, इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। नई दुनिया में तो झूठ का नाम निशान नहीं होता है। अभी तुमको झूठ और सत्य का फर्क का पता चल गया है, तुमको बाप ही आकर के बतलाते हैं क्या सत्य है क्या झूठ है, ज्ञान क्या है भक्ति क्या है, भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, शिष्टाचारी किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, और वहां नई दुनिया में विकार होता ही नहीं है। तुम खुद कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, वहां रावण राजी नहीं होता। तो ये सहज समझने की बातें हैं, परंतु फिर क्या करना चाहिए? और पवित्र तो जरूर बनना है, वैश्यालय में वैश्या नहीं बनना चाहिए। इस वैश्यालय में विषय सागर में गोते खाते खाते क्या हाल हो गया है, इसलिए बाबा पर्चे छपवाए हैं। कली भी भिकारी हो या सत्य भी निर्विकारी हो, परंतु बंदर इन बातों को समझ के छोड़े। कोटों में कोई ही निकलेंगे जो इस कुल का होगा तो उनको ये बात जचेगी, ख्याल में आवेगा कि जाकर के इनका अर्थ समझो, थोड़ा टच होगा। ये लिखत तो राइट है, बरोबर, विकारी तो सारी दुनिया है। दूसरी बात, म्यूजियम में तो बहुत मनुष्य आते हैं, तो बहुतों को देख करके मनुष्य समझते हैं जरूर यहां कुछ है, तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, ये कोई बड़ी संस्था है। ऐसे चित्र आदि तो कोई निकाल नहीं सकता, इसकी बुद्धि में बैठ ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, मनुष्य पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं, परंतु वह मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म, और हम कहते हैं मनुष्य के सिर्फ 84 जन्म। और कोई तो ऐसे भी है जो पुनर्जन्म कोई नहीं मानते, हम कहते हैं सिर्फ ईश्वर ही है, जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ये हम कहते हैं। अच्छा देखो, ये मनोहर बेटी है, कितनी सर्विस करती है, सर्विस के लिए जैसे हैरान रहती है, चारों तरफ भागती दौड़ती रहती है, ऐसे कोई सर्विसेबल कहा जाता है? शिव बाबा, और यह बाबा भी कहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर जिस सर्विस में ही समय गंवाते होंगे। सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए, इसका कल्याण करने के लिए रास्ता बताना चाहिए। बाबा जानते हैं इनको सर्विस बगैर सुख नहीं मिलेगा, बाप का अंदर का प्यार रहता है, अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बाबा के पास बहुत युक्ति है। अच्छी सर्विस करने वाले पर आत्मा कुर्बान जाती है। प्रतिष्ठित मित्र कितना समझाते हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं उस समय कहेंगे ये बहुत अच्छा नॉलेज है, ये नॉलेज तो सभी को मिलना चाहिए, परंतु खुद नहीं लेंगे। फिर भी हर्जा नहीं है, जब भीड़ पड़ेगी इत्तफाक होगा तो उनको भी याद आएगा। जब मसान में जाने का समय आता है तो वैराग आता है ना, तुम्हारे लिए तो उस वैराग की बात ही नहीं है। तुम तो कहते हैं हम पढ़ते हैं जिससे उच्च पद मिलता है, ड्रामा अनुसार। सत्य में तुमको बहुत सुख है, वहां ऐसी कोई बात होती नहीं है, तो वहां तुम एवर हेल्दी बन जाते हो, और एवर हेल्दी बनने का ज्ञान तुमको यहां मिलता है। अच्छा ओम शांति।